Chapter 8. ज्ञान दिव्यादृष्टिशलाकृतम ये तस्म श्रीगुरवे नम श्रीचैतन्य मनोभिष्टम स्थापित ये नूतः स्वयं रूपकृष्णा कृष्ण चैतन्य प्रभुनंदवास भक्त हरे कृष्ण 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 हरे
राम।
सब भक्तों को वो प्राप्त हो गया था। लास्ट टाइम हमने चैप्टर का ब्रेकडाउन बताया था आपको। ओके, सो भगवद गीता के सातवें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को कुछ आठ अलग अलग चीज के विषय में बात की थी। तो अर्जुन भगवान से वो क्लैरिफिकेशन चाहते, इसको ठीक करो माइक। So,
closer.
So, जितने भी अलग अलग टर्मिनोलॉजी से अर्जुन ने सुना था भगवान से कि अधि यज्ञ क्या है, अधि भूत क्या है, अधि दैव क्या है, तो ये सारे चीज़ों के विषय में भगवद गीता के आठवें अध्याय शुरुआत में भगवान के विषय को बताते हैं। आठवें अध्याय को योग मिश्र भक्ति माना जाता है। योग मिश्र भक्ति के विषय में भगवान बताते हैं, वो बताया गया था। सो हम जैसे हमने चर्चा किया था, अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं पहले कुछ श्लोकों में, और उसके बाद फिर भगवान अर्जुन को उत्तर देते हैं, और अंतिम जो दो प्रश्न है अर्जुन के, उस उत्तर को भगवान एलोबरेट करते हैं उसके उत्तर को, और उस उत्तर से पूरा आठवां अध्याय बनता है, और जिसका अंत होता है भक्ति योग के महिमा। फिर नौवें अध्याय से भक्ति योग की महिमा शुरू होती है। सो जैसे हमने आपको पहले बताया था कि 15 मई को मैं 2 महीने के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ बाहर, तो पहला मॉड्यूल में आपके जितने 9 चैप्टर्स जो होते हैं भगवद गीता के, वो हम समाप्त करेंगे। तो आपके पास उस समय का जो महीना 15 मई के बाद का जो समय है, उसमें आप चैप्टर टेस्ट के रिक्वेस्ट कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, और रीडिंग कर सकते हो ये चैप्टर वाइज। और जुलाई में आपका मॉड्यूल टेस्ट हम लेंगे 1 से 9 का। सो लास्ट थर्सडे को हम चाहते थे, लेकिन वेडनेसडे को, लेकिन हमारे मंदिर में बहुत सारे वरिष्ठ भक्त आए थे जिनके प्रवचन लगातार चल रहे थे, तो हम प्रयास करेंगे कि अभी बचा हुआ जो समय है उसमें हम पूरा आपके साथ चर्चा कर लें। सो आठवें अध्याय का जो पहला श्लोक है, पहला और दूसरा श्लोक, वो अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न है, तो वो आप पढ़िए पहला श्लोक।
अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं?
तब ये प्रश्न जो है उस ये दो श्लोक में कितने प्रश्न आए आप चेक कर सकते हो, काउंट कर सकते हो कितने प्रश्न है ये दो श्लोक में?
पहले में पांच है, दूसरे में
तो ये आठ प्रश्न के उत्तर हम आगे के पूरे श्लोकों में पढ़ेंगे। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, आई एम स्पिरिट। इट इज सेड दैट वन शुड अंडरस्टैंड दैट ही इज ब्रह्मन, स्पिरिट सोल। दिस ब्रह्मन कंसेप्शन ऑफ लाइफ इज ऑल्सो इन दिवस। The pure devotees are transcendentally situated on the Brahman platform and they know everything about transcendental activities. Only person who perform activities in Krishna consciousness, Mam Ashritya, are actually entitled to be called Brahman because they are actually endeavoring to reach the Krishna planet. Such persons have no misgiving about Krishna and thus they are factually Brahman. Aisa सातवें सातवें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान जब प्रभुपाद ब्रह्म के विषय में चर्चा कर रहे थे वो हम यहाँ पर पढ़े। तो ब्रह्म जो है उसके कई अर्थ होते हैं। आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं, स्वभाव को भी ब्रह्म कहते हैं, प्रकृति को भी ब्रह्म कहते हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं और उसका प्रयोग जिस तरह से किया जाता है उस तरह से उसका अर्थ होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब गुरुकुल में थे तो एक कभी विद्यार्थी के रूप में कभी जाते थे किसी के पास और कहते थे ये सूत्र है इसका अर्थ करके दो, तो वो संस्कृत का अर्थ पूरा करके देते। महाप्रभु बोलते गलत, इसका अर्थ ये नहीं होता है। महाप्रभु उनको पूरा दूसरा अर्थ बताते थे, इसका अर्थ ये होता है, तो उसको गलत साबित करते थे। तो सामने वाला जो व्यक्ति होता था वो कहता हाँ बात तो सही है, हाँ पंडित है, निवाई पंडित है, पंडित हो आप जो बताया एकदम सही, मेरा अर्थ पूरा गलत था। जब ऐसा सब बोलते हैं फिर महाप्रभु उनको कहते हैं अरे क्या, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं जो बताया वो गलत था, तुम जो बताए वो सही था। तो ऐसे दो तीन बार ऐसे महाप्रभु निवाई पंडित के रूप में संस्कृत की शब्दावली का यूज करके पाणिनि व्याकरण और पाणिनि व्याकरण पढ़ते थे। तो महाप्रभु मैं जब छोटा था मुझे भी शौक था ऐसा, तो मैंने पाणिनि व्याकरण मेरे पास है, आई हैव पाणिनि व्याकरण, पाणिनि ग्रामर। सो संस्कृत इज सच ए रिच लैंग्वेज, ऑपुलेंट लैंग्वेज। तो यहाँ पर जितने टर्म यूज किए गए हैं उस सब में कई ज्यादातर सब में अधि शब्द स्पेशल है, सिग्निफिकेंट है। अधि का एक अर्थ होता है ऊपर, यू नो श्रेष्ठ, अबो, यू नो एक अर्थ ये होता है। लेकिन अभी अर्जुन के जो प्रश्न है उसको किस तरह से हमें समझना चाहिए? अर्जुन कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो ब्रह्म को, परमात्मा को ब्रह्म कहा जाता है या फिर आत्मा को ब्रह्म कहा जाता है? भगवान के प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप किसको ब्रह्म कहते हैं। आप अभी जो अभी चर्चा किए हैं मुझसे उसमें आप ब्रह्म के विषय में बात कर रहे थे, तो वो जो ब्रह्म है वो आत्मा था या परमात्मा? फिर अर्जुन ने पूछा अध्यात्म किसे कहते हैं, तो अध्यात्म क्या मन बुद्धि से बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर है वो अध्यात्म है या फिर आत्मा को आप अध्यात्म कहते हो? फिर कर्म फल कर्म किसे कहते हैं? कर्म के विषय में तो अर्जुन पहले से थोड़ा था ही ऐसे कि किसको कर्म कहते हैं या कर्म किसको कहते हैं। तो सकाम कर्म को आप कर्म कहते हो या आध्यात्मिक कर्म को कर्म कहते हो, अर्थात मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कर्म के विषय में। अधिभूत के विषय में पूछते हैं कि आप अधिभूत किसे कहते हो। अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि अधिभूत क्या आप जो शरीर है उसको अधिभूत कहते हैं या फिर स्थूल वस्तुओं को अधिभूत कहते हैं, किसको अधिभूत कहते हैं? अधिदैव के विषय में अर्जुन पूछते हैं कि अधिदैव क्या देवताओं के विषय में माना जाता है अधिदैव, या तो फिर विराट पुरुष के विषय में ये अधिदैव शब्द का प्रयोग हुआ है। और अधियज्ञ के विषय में अर्जुन पूछते हैं कि अधियज्ञ क्या भगवान अधियज्ञ है, देवताएं अधियज्ञ है, या हम खुद अधियज्ञ है। इस तरह से अर्जुन अलग अलग शब्दों का अर्थ पूछ रहे हैं। और फिर अंत में पूछते हैं कि अगर ये अधियज्ञ है तो वो रहते कहाँ है, और मृत्यु के समय पे अधियज्ञ जो है उनका स्मरण कैसे किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न अर्जुन पूछते हैं। नेक्स्ट जो श्लोक है जो सेकंड श्लोक में एक बहुत अच्छा प्रश्न जो अर्जुन ने पूछा था कि जो आपकी भक्ति में लगे हुए हैं वो मृत्यु के समय पे आपका चिंतन कैसे कर सकते हैं, हाँ ये प्रश्न पूछा। तो अर्जुन ने भगवान ने अर्जुन के जो पहले 6 प्रश्न है वो तो एक एक लाइन में आंसर दे दिया, बाकी के जो 2 प्रश्न है उसको डिटेल किया। तो पहले 2 श्लोक पढ़िए, सॉरी 3 और 4।
भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उनका और उसका सनित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। चौथा श्लोक, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित है अधिदेव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ।
तो यहाँ पर कहा जाता है ब्रह्म क्या है, तो भगवान अर्जुन को कहा कि जीव जो है उसको ब्रह्म कहा गया। जीव प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ब्रह्मन इज इंडिस्ट्रक्टेबल एंड इटर्नली एग्जिस्टिंग एज कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट चेंज एट एनी टाइम बट बियॉन्ड ब्रह्मन देयर इज अ परब्रह्मन एंड ब्रह्म रिफर्स टू लिविंग एंटिटी एंड परब्रह्म रिफर्स टू सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड। ब्रह्म का उपयोग होता है भगवान के लिए और परब्रह्म का उपयोग होता है भगवान के लिए। ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए। फिर अध्यात्म क्या है, तो अध्यात्म के विषय में कहते हैं कि जीव का जो स्वभाव है, जीव का स्वभाव है वो अध्यात्म है। क्या है जीव का स्वभाव?
सेवा
है, वो अध्यात्म है। जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है आत्मा की वो है सेवा करना। तो जब तक हम स्वप्नावस्था में रहते हैं तब तक हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में या अपनी स्वाभाविक अवस्था में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्वप्नावस्था में हम नहीं जानते कि मैं किसी का पुत्र हूँ, पति हूँ, बेटा हूँ, या मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये करना है, दैट ही टोटली फॉरगेट्स। बट जैसे वो नींद में से जागता है तो उसकी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास उसको भान होने लगता है ना। जैसे आपके पेंडिंग वर्क पड़े होते हैं, आपने सोच कर रखा है कि मैं कल सुबह जाके ये करूँगा या नींद में उठ के ये काम करना है मुझे आज, तो जब आप उठते हैं फिर अचानक आपके माइंड में वो मेमोरी याद आती है, ओ अच्छा है मुझे आज ये करना था, वो करना था, ये करना था, यू नो। सो द पॉइंट इज दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू रिवाइव अवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। हमारी जो स्वाभाविक स्थिति जो है उस स्थिति को हमें प्राप्त करना है, वो है सेवा, सेवा करना। प्रभुपाद कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द लिविंग एयर इज डिफरेंट फ्रॉम द पोजिशन इट टेक्स इन द मटेरियल वर्ल्ड। इन मटेरियल कॉन्शियसनेस इज नेचर टू ट्राई टू बी द लॉर्ड ऑफ मैटर, बट द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस क्रिस्टल कॉन्शियसनेस इज पोजिशन टू सर्व द लॉर्ड। वॉट इज कर्म? कर्म शब्द को उपयोग किया गया है, कर्म केवल कर्म नहीं है। यहाँ पर भगवान कहते हैं जो कर्म, तो कर्म के विषय में कहा गया है कि कर्म जो है वो वी कैन कॉल इट जर्नी ऑफ जीव, जर्नी ऑफ जीव इज कर्म। जीवात्मा का जो यात्रा है वो कर्म माना जाता है। आप समझे ना, जीवात्मा की यात्रा, जो कर्म हम करते हैं उसके आधार से हमें परिणाम प्राप्त होता है और उसके आधार से हमें अलग अलग शरीर बदलने पड़ते हैं। सो और इन अदर वर्ड्स कर्म साइकिल, साइकिल ऑफ कर्म। सो ये कर्म जो है जीव कर्म शब्द का एक अर्थ ये होता है कि वो जीवात्मा की यात्रा, उसी का दूसरी दूसरे शब्द में उसको ऐसे समझ सकते हैं वो चीज जिससे व्यक्ति भौतिक शरीर धारण करने के लिए विवश हो जाता है ना, वो कार्य जो भौतिक शरीर का निर्माण करता है। तो इसलिए आत्मा जो है वो कर्म करता है और फंसता है, ये उसका स्वभाव है। और ये कर्म जो होता है वो प्रकृति के तीन गुणों के अध्यक्षता में होते हैं, और जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे वैसे उसको अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। जैसे कभी कुत्ते का, बिल्ली का, मनुष्य का, देवता का, ब्राह्मण का, क्षुद्र का, इस तरह से अलग अलग शरीर उसको कर्म के परिणाम के स्वरूप प्राप्त होते हैं। और इस कर्म के कारण वो शरीर को अपने आप मानने लगता है, अपनी पहचान शरीर से करता है और फंसता रहता है। दैट मेक्स हिम लाइक दिस। इसलिए स्वस्थ शब्द का अर्थ होता है, कई बार हम कहते हैं ना आप स्वस्थ हो, जनरली हम आप पूछते हैं आप स्वस्थ हो, तो स्वस्थ शब्द का अर्थ ये नहीं कि आप हेल्दी हो। स्वस्थ शब्द का दूसरा अर्थ होता है कि आप स्व में स्थिर हो। स्व और स्थ, स्थ का अर्थ है स्थिर, जो स्व में स्थिर है उसको स्वस्थ कहते हैं। स्व क्या है? आत्मा। जो आत्मा में स्थिर है, जो आत्मा को जानता है, जो आत्मा के आत्मा स्वयं वो आत्मा है ये सोचकर कार्य करता है, उसको स्वस्थ माना जाता है। बाकी सभी अस्वस्थ है, बाकी सब अस्वस्थ है। तो जीव जो है वो तटस्थ शक्ति है। जैसे आप थोड़ा पास में आ जाइए, अदरवाइज द नेक्स्ट वन विल सिट आउटसाइड द गेट। तटस्थ जो तट पे स्थिर है, तट का अर्थ होता है कि आत्मा अगर चाहे तो माया की ओर भी जा सकता है और आत्मा चाहे तो भगवान की ओर भी जा सकता है। इधर बोथ द ऑप्शंस आर ओपन। एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां से रास्ता दो जगह विभाजित होता है, लेफ्ट एंड राइट। नाउ यू हैव टू डिसाइड कहां जाना है। तो ये आत्मा का स्वभाव है। नाउ अधिभूत शब्द का अर्थ होता है कि भौतिक प्रकृति जो निरंतर परिवर्तन प्राप्त करती है, निरंतर परिवर्तन होता है जिसमें प्रकृति, भौतिक प्रकृति का स्वभाव क्या है कि वो नाश होती है, नश्वर, प्रतिक्षण उसका नाश होता है। ये भौतिक प्रकृति में सब आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल ये घर है, तो ये घर जो है वो प्रतिदिन नष्ट हो रहा है, हमारा शरीर है वो प्रतिदिन नष्ट हो रहा है, कुछ भी आप ले लो, कुछ भी एनीथिंग, यानी माइक है, मोबाइल है, लैपटॉप, कुछ भी यू टेक, एनीथिंग यू टेक, प्रतिदिन वो नष्ट होता है, प्रतिदिन परिवर्तन प्राप्त होता है, ये भौतिक प्रकृति का स्वभाव है। और श्री प्रभुपाद कहते हैं इसके विषय में, अधिभूत के विषय में, द फिजिकल नेचर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मटेरियल बॉडीज जनरली पास थ्रू सिक्स स्टेजेस, दे आर बॉर्न, ग्रो, रिमेन फॉर सम ड्यूरेशन, दे प्रोड्यूस सम बाय प्रोडक्ट्स, दे ड्विंडल, दे वैनिश। This is physical nature is called adhibhut. It is created at a certain point and will be annihilated at a certain point. And Krishna is the ultimate governor. Bhagwan jo hai, ye prakriti ke ek matra swami hai. Aur Bhagwan ke siva is prakriti ka jo management hai, wo koi nahi kar sakta. साइंटिस्ट अगर चाहे तो भी आपके शरीर को बूढ़ा होने से रोक नहीं सकते। पुरुष का स्त्री बनना आजकल फेमस हो गया, पुरुष का स्त्री बनना, स्त्री का पुरुष बनना, यू नो नाउडेज इट इज हैपनिंग। वही तो पहले भी हुआ करता था, ऐसे योगियों योगी लोग कर सकते थे ऐसा, लेकिन वो किसी भी भौतिक वस्तु को मरने से रोक नहीं सकते, दे कैन नॉट स्टॉप ड्विंडलिंग। सो और इसीलिए हमारा समस्या शुरू तभी हो जाता है, हम है आत्मा और हमें सब कुछ शाश्वत वस्तुओं का आदत पड़ा हुआ है, क्योंकि हम शाश्वत है ना, तो हमें आदत पड़ी, जैसे समझ लो आप गुजराती हो, अगर आप रोज यहाँ पर सब्जी चपाटी खाते हो तो आप यहाँ पर आदत ही है आप सब्जी चपाटी खाने के लिए, यू आर हेल्थ। अभी आपको भेज दिया जाए किसी भी ऐसी कंट्री में जहाँ पर आपको सैलड्स एंड सूप ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलता है, बहुत सारे कंट्री ऐसे सैलड एंड सूप, तो आप आदत ही नहीं हो ना, तो आप परेशान हो जाते हो। एक दिन है ठीक है, हाँ आज अच्छा, दो तीन दिन, चार पांच दिन के बाद टू मच। मेरा अनुभव, मैं यूरोप से जब आ रहा था तो क्या क्या ऐसे भक्त को पहले से फ़ोन कर दिया था अहमदाबाद में कि मैं जब आऊँ तो मेरे लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना प्रसाद के लिए सब्जी चपाती सब टेस्टी डेलिशियस फूड बनाना, यू नो आई एम फेड अप ईटिंग दिस सैलड्स एंड सूप्स एवरी डे। आदत ही नहीं है ना हम, तो हम शाश्वत जीवन की आदत ही है, हमें शाश्वत जीवन चाहिए और हम फंस गए हैं नश्वर शरीर में। अब ये शरीर हम नहीं चाहेंगे, हम कुछ भी नहीं चाहते ऐसा कि नष्ट हो, शरीर नष्ट हो जाता है, आनंद नष्ट हो जाता है, भौतिक प्रकृति नष्ट होती है, घर सब कुछ नष्ट हो जाता है, ये नश्वर है सब कुछ, और इसलिए हमारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, फुल ऑफ पेन, सब जगह कष्ट ही कष्ट। क्यों? क्योंकि आपके जो स्वभाव है उसके विपरीत है सब कुछ, आप आनंदमय है और ज्ञान दुखमय है सब कुछ, आप शाश्वत है और यहाँ पर सब कुछ नश्वर है, आप चेतन वाले हैं, ज्ञान वाले हैं, यही जड़ प्रकृति है, तो इसलिए आपका संघर्ष होता है। प्रकृति स्थानी कर्षति, वो शब्द आया था पहले श्लोक में, आगे कुछ अध्याय में, हाँ प्रकृति स्थानी कर्षति, अभी ठीक है, ये प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता का, प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति के साथ संघर्ष करता है। सो ईश्वरी सर्वभूतानां हृदय सर्जन ब्राह्मण सर्वभूतानां हृदय सर्जन एनीवे दिस सम अदर श्लोक आई फॉरगॉट द टाइटल सो तो ये स्वभाव है अधिदैव के विषय में जब बात हुई तो अधिदैव क्या है विराट रूप भगवान का जो विराट रूप है उसको अधिदैव माना जाता है अधिदैव भक्तों के लिए नहीं है वो भौतिकवादी लोगों के लिए है ना जो विश्वरूप है वो भौतिकवादी लोगों के लिए भक्तों के लिए नहीं है भक्त पसंद नहीं करते विश्वरूप को क्योंकि वो भौतिक प्रकृति का मैनिफेस्टेशन है प्राकट्य है ना लेकिन उसका संचालन वो भगवान का एक स्वरूप माना जाता है इसलिए देवता भी उसी के अंश है विराट रूप के इसलिए अधिदेव का अर्थ ये नहीं होता कि देवता है ना महादेव देव क्योंकि लोग जो गलत अर्थ निकालते हैं भगवद्गीता के तो उसमें वो लोग ये नहीं समझ सकते अधिदेव किसे कहते आप एक बार कोई भी और कोई भगवद्गीता खोल के देखना ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसका सही अर्थ आपको प्राप्त नहीं होगा कुछ ना कुछ अलग 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 चीज प्राप्त होती है तो देवताओं को भगवान का अंश मानना कौन अधिदेव देवताओं का आदि भगवान है तो विराट रूप जो है वो अधिदेव माना जाता है और देवताओं की पूजा जो है वो इनसे स्वतंत्र होकर नहीं की जा सकती और उसके बाद है अधियज्ञ अधियज्ञ का अर्थ होता है हृदय में विराजमान परमात्मा जो यज्ञ पुरुष भी माने जाते हैं क्योंकि शास्त्र में कोई भी यज्ञ ऐसा नहीं है जिसका शुरुआत ओम या हरि ही से ना हो कोई भी मंत्र देखिए ओम बीज मंत्र है ओम बोलेंगे तभी कोई मंत्र शुरू होता है ओम से हरि ही ओम एक मंत्र इसी तरह से शुरू होते हैं है ना सो अधियज्ञ भगवान के परमात्मा स्वरूप को बताया गया है तो अभी ये सब प्रश्न के उत्तर हुए अभी आगे के प्रश्न के उत्तर भगवान आगे के दो श्लोकों में दे सके आप एक श्लोक पढ़िए पांच नंबर का श्लोक पढ़िए
और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है
बहुत प्रसिद्ध श्लोक है अंधकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह व्रयाति समत भावम याति नास्ति संशय ये श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महिमा बताई गई है सातवें अध्याय के अंत में भगवान ने ऐसा कहा था कि दोज इन फुल कॉन्शियस ऑफ मी हु नो मी द सुप्रीम लॉर्ड टू बी द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ द मटेरियल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेमिगॉड्स एंड ऑफ ऑल मेथड्स ऑफ सैक्रिफाइस कैन अंडरस्टैंड एंड नो मी The Supreme Person of Godhead, even at the time of death. Even at the time of death. So, इस चीज को लेकर के फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछा थे तो आइडिया ये है कि भगवान को अंतकाल में स्मरण करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम इसके विषय में हमारे आचार्यों ने बहुत अलग अलग टीका लिखी है जैसे अजामिल ने अंतकाल में नाम लिया था भगवान का अंतकाल है जो माने वो तो हमारा जो लक्ष्य है जीवन का वो यही है कि जीवन के अंत में हमें भगवान का चिंतन करना इतना आसान नहीं है अलग अलग परीक्षाएं हम देते हैं जीवन में स्कूल में बच्चा होता है तो स्कूल से उसके एग्जाम शुरू होती है कॉलेज वगैरह सब पार करता है उसके एग्जाम्स में जाते हैं इसके अलावा फिर जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं यू नो, जैसे आप लाइफ पार्टनर ढूंढना तो ये बहुत बड़ी ये गैम्बल होता है, उसमें तो आप लग गया तीर में तो, तो उसके बाद फिर जीवन में और भी आगे बहुत सारी चीज़ आती है, बहुत सारी चीज़ जीवन में अनेक अनेक प्रकार की परीक्षाएं हम गुजरते हैं उसमें से। सो सभी परीक्षाएं, सभी जो एग्जामिनेशन है, वो सारे एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सीरियस, सबसे गंभीर और सबसे सर्टन निश्चित जो एग्जाम है वह है मृत्यु, अंतकाल। अंतकाल में हमें भगवान का चिंतन करना बहुत ही आवश्यक है और स्मरण करना। तो स्मरण करने के लिए क्या करना पड़ता है? श्रवणम कीर्तनम। अगर हम अभी से श्रवणम कीर्तनम करते हैं तो अंतकाल में हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं। ये कई बार हमें समझना मुश्किल लगता है, हाँ सुनने में आसान लगता है कई बार। क्या सुनने में आसान लगता है? कि हाँ उसमें क्या है, अंतकाल में कर लेंगे चिंतन, उसमें क्या है, भगवान को चिंता है, प्राण क्रिया हो जाएगा, वो कर लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा होता नहीं। तो पर एक लेक्चर में कहे, दिस इज अल्टीमेट गोल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। जन्म के अंत में अंतकाल जो मामे व सर्टनली एव शब्द का अर्थ है मेरा, एव सडनली स्मरण, मेरे चिंतन करते हुए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अर्चा विग्रहों की जो उपासना करना है उससे आपका मन बहुत सरल भाव से भगवान के चिंतन में रहता है। डिटी वर्षिप आप करते हो ना, लड्डू गोपाल है, गोवर्ण हिताय है, जो भी भगवान की आप आराधना घर पे फोटो का डिटी का पूजा करते हो, इससे आपका मन जो है वो स्थिर रहता है। कैसे? और कुछ सोचने का समय नहीं है। सुबह उठोगे आप भगवान को भोग बनाना है, उनका स्नान कराना है, उनके वस्त्र बदलना है और भगवान मंदिर के लिए अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है, सेलिब्रेशन फेस्टिवल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ एक रूप से आपको उनके चिंतन करने के लिए बाध्य कर देती है। तो बार बार आप उनका चिंतन करते हो, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि आप अर्चन विधि करते रहो, जिससे आपका हृदय हमेशा लगा रहेगा भगवान के चिंतन में। और इस अभ्यास की आवश्यकता है क्योंकि एक जनरल प्रिंसिपल है, वो छठे श्लोक में बोला गया है। पढ़िए।
हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है।
यम यम वापी स्मरण भावम तयति अंते करे वरम। जो जिस भाव से शरीर त्याग करता है उसको वो भाव प्राप्त। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है दोनों श्लोक। पहले भगवान ने कहा कि मेरे पास मेरा चिंतन करो, है ना, जैसे कहने का एक तरीका होता है अंतकाल में जमा मेरे को। भगवान ने कहा कि अंतकाल में जो मेरा चिंतन करता है, लेकिन अगर अंतकाल में कोई आपका चिंतन नहीं कर पाए तो अर्जुन पूछते तो क्या होगा? तो फिर भगवान सिद्धांत बताते। सिद्धांत क्या है? यम यम भाव स्मरण, जो जिस भाव का चिंतन करता है वो उस वस्तु को प्राप्त करता है। एक साधारण प्रिंसिपल सरल। इसके विषय में कई बार हम कहते हैं कि पूरे लाइफ में अगर आप जो कुछ करते हो अंत में आपको स्मरण आता है। विशेष करके आप देखा होगा कि कोई व्यक्ति आपके करीब है, अगर वो व्यक्ति जैसे आपके रिलेटिव है कोई भी, अगर उनका देहांत होता है तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर आपको उनके साथ जो आपने बिताए गए जितने भी मेमोरीज है, यू नो, जितने भी मोमेंट्स है, वो सब आपको उस समय एक जैसे फिल्म जा रही हो इस तरह से आपके सामने आता है। ऑल सिंस बिगिनिंग, जैसे कोई मूवी आपके सामने एक सेकंड में सब घूम रहा है आपके सामने, यू नो, वेरी वेरी फास्ट क्विकली, यू नो, इस तरह से वो आपके सामने आंखों के सामने आता रहता है। और कई बार ये अगर इसी मेमोरी में कुछ पड़े रहते हैं तो कुछ लोग शोकग्रस्त रहकर कई साल कई दिन बीत जाते हैं इस तरह से, People, they remain in such miserable condition. They just keep on thinking the past memories. लेकिन एक example हम देख रहे हैं कि उसमें भी अगर आपको स्मरण होता है, आप सोचिए, तो जब आपका स्वयं का अंत होगा, तो आपके लाइफ की हर एक जो इंसिडेंट हुए हैं बचपन से लेकर अभी तक, वो सारे इंसिडेंट आपको याद आएंगे, सारे इंसिडेंट आएंगे। कपल उदाहरण देते हैं, अगर आपने दिन में सोना देखा है और पर्वत देखा है, तो हो सकता है कि रात को आपको सपने में सोने का पर्वत देखने को मिले। Whatever you do during the daytime, that reflects in your dream. And in the same way, whatever you do during the whole of your life, that will reflect at the last moment when you're quitting your body. आपका शरीर आप त्याग करते तब आपको सब याद आएंगे। So, इसलिए हमें पहले से चिंतन करना पड़ता है, पहले से। प्रभुपाद कहते हैं, श्रीमद् भागवत में एक जगह लिखा है कि परीक्षित महाराज, उन्होंने अंत के जो 7 दिन है वो उन्होंने कैसे व्यतीत किए थे, पूरा समय कृष्ण भावनाओं में रहे थे। अंत समय में आप चिंतन जो खटवांग महाराज, खटवांग महाराज ने क्या किया, युद्ध किया था देवताओं के पक्ष में और सब कुछ जीतने के बाद थक गए बहुत पूरी तरह से। इंद्र ने कहा वरदान मांगो, तो खटवांग महाराज ने कहा कि मुझे कोई वरदान नहीं, चाहे इंद्र इंद्रलोक में आ जाओ, स्वर्ग लोक, मुझे कोई स्वर्ग लोक, तुम लोग का मैं तो तुम्हें तुम मैं जीता है आपको तो मैंने मुझे क्या चाहिए, तुम्हारा स्वर्ग नहीं चाहिए। What do you want? इंद्र ने कहा कुछ तो वरदान चाहिए, आप लेना चाहिए। तो कहा कि ठीक है, इतना बता दो कि मेरे जीवन में अभी कितने क्षण शेष बचे, कितना समय बचा है जीवन में। तो बोले बस एक क्षण, देन यू आर गोइंग टू डाई। तो महाराज खटवांग ने जैसे उनको पता पड़ा कि मेरे लाइफ में बस एक ही पल बचा है, तो वही पल उन्होंने भगवान को शरणागत किया। वही क्षण उन्होंने भगवान को शरणागत हो गए और भगवान चले गए लक्ष्मण। लेकिन भरत महाराज का क्या हुआ था,
हिरण का
जीवन तक भगवान की
भक्ति, पूरा जीवन का भक्ति किया, अंत में लास्ट मोमेंट भूल गए, लास्ट मोमेंट हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए और अंत समय हिरण का चिंतन करते शरीर त्याग किया। सो डेंजरस। ऐसा भी कहते हैं हमारे भक्त लोग कि अगर आप कोई भक्त कोई भक्त अगर वो पुरुष है और उसके स्त्रियों में बहुत आसक्ति है, पत्नी में या और कोई स्त्रियों में बहुत आसक्ति है, या फिर अगर कोई स्त्री भक्त है उसको पुरुष में बहुत आसक्ति है या पति में बहुत आसक्ति है, तो दूसरे शरीर में उसको वही शरीर प्राप्त होगा, उसको उस प्रकार की शरीर प्राप्त होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अंत के समय पर सिचुएशन बहुत क्रिटिकल बन जाती है। आप लोगों ने तो देखा होगा अंतकाल कैसा होता है, यू नो, यू हैव सीन आपके रिश्तेदारों का या किसी ना किसी का अंतकाल आपने देखा होगा कैसा क्रिटिकल होता है। महाराज कुलशेखर क्या प्रार्थना करते हैं, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव विशतु मे मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तौ कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्रभुपाद जी इसको गाते थे बार बार, प्रभुपाद जी इस चीज को गाते थे। इसका अर्थ क्या होता है, प्रभुपाद कहते हैं, ये कुलशेखर महाराज की प्रार्थना, वो कहते हैं कि हे कृष्णा, अभी मेरा जीवन स्वस्थ है, अभी मेरा शरीर स्वस्थ है, इसलिए मैं आपका चिंतन कर सकता हूं, कृपा करके मेरा शरीर का अंत इसी समय कर दो। अभी मेरा मन आपके चरणों में स्थिर है, किंतु यदि जब मृत्यु का समय आएगा तो मेरा मन विचलित हो जाएगा, कफवात पित्त से मेरा गला रुंधा जाएगा और मैं आपका चिंतन कैसे कर पाऊंगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं ना, जन्म लाभ परपुंसान अंते नारायण स्मृति। अंत जन्म लाभ क्या है, अगर हमारे जीवन का जो सर्वोत्तम लाभ है वो क्या है, अंत में नारायण का चिंतन, अंत में नारायण का स्मृति होना, ये जन्म लाभ है। तो कुलशेखर महाराज कहते हैं कि मुझे अभी शरीर त्याग करवा दो। परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, लेट द स्नेक बट बाइट मी एट वंस। मुझे अभी मारे, अभी मैं श्रवण कीर्तन में लगा हूं ना सुखदेव गोस्वामी के पास, तो अभी मुझे सर्पदंश हो जाए, मेरा और कोई इच्छा नहीं है, मैं निरंतर आपके गुणगान गाता रहूं, ये प्रार्थना परीक्षित महाराज कहते हैं। सो अगर आप अभ्यास करोगे, मृत्यु के समय पे अचानक से भगवान का चिंतन करना इतना आसान नहीं है। तो हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लेटर है, उसमें से ये बहुत प्रसिद्ध है, कई भक्तों को पता है, तो मैं आपके सामने संक्षिप्त में उसको बताता हूँ कि एक भक्त था, वो उसको वो अपने विषय में बता रहा था, वो हॉस्पिटल में डाला था, तो उसने कहा कि एक बहुत बड़ी अस्पताल में, वो अंतिम समय था उसका, तो बता रहा था कि बड़े बहुत अस्पताल, जैसे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री हो वैसी अस्पताल थी, उसके अंदर मैं एडमिट था, और सब जैसे समझ लो सब इतने बड़े पीड़ित, बहुत कठिनाई अनुभव कर रहे थे, कुछ लोगों के बहुत ही अजीब उनके शेप थे, और कुछ लोग चिल्लाते थे, कुछ लोग रोते थे, ऐसा लग रहा था हॉस्पिटल में जैसे मानो कि कर्म के दांतों के बीच में सब चबाए जा रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था सबका, कोई ये कष्ट से पीड़ा रहा है, कोई उस कष्ट से पीड़ा, जैसे कई बार हम कहते हैं भक्तों को कि अगर आपको पता नहीं है ना भौतिक जगत कैसा है, तो आप कैंसर हॉस्पिटल चले जाओ एक बार और चेक करो कैसे लोग होते हैं वहाँ पर, है ना, तब आपको पता पड़ेगा कि ये भौतिक कष्ट कैसा होता है, भौतिक प्रॉब्लम है ना, समस्या है। सो इतना सब होने के बाद भी प्रभुपाद का भगवद गीता मेरे पास था, ये भक्त कह रहा था, इसलिए मेरा मन जो है वो निरंतर कृष्ण में लगा रहा। तो ये सारी लंबा डिटेल है कि शरीर तो ऐसे भी जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु तो अवश्य ही है, ये जन्म शरीर लिया है तो मरना तो है ही इस शरीर को, आज नहीं तो कल, उसमें अलग अलग स्टेजेस आते हैं, जैसे बचपन फिर जवान होता है, और जवान भी हमेशा थोड़ी नहीं रहता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, तो कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ये शरीर का नाश होना। लेकिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं इसके ऊपर, इस वंडरफुल पॉइंट इज गिवन, वो कहते हैं कि जीवन इतना कीमती होता है, आई बेग यू टू कंसिडर ऑल दिस एंड थिंक अबाउट योर ओन लाइफ, आप अपने जीवन के लिए विचार करो, अपने जीवन का विचार करो, सर्वदा मान, प्लीज बी सीरियस इन योर डिवोशनल सर्विस, आप कृपा करके अपनी भक्ति के जीवन में गंभीर बनिए, आई एम एक्सप्रेसिंग दिस ट्रायल फॉर माई बेनिफिट एंड फॉर योर्स, प्लीज मेक अप एज मच प्रोग्रेस एज यू कैन वाइल यू आर फिट, यू नो एंड थिंक while you are able to function as a normal human being. जितना हो सके उतना ज्यादा श्रवणम कीर्तनम और सेवाएं कीजिए, क्योंकि अभी आपका शरीर स्वस्थ अवस्था में है, आप चल फिर सकते हो, आप सुन सकते हो, देख सकते हो, बोल सकते हो, अभी आपका शरीर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है अभी, यू नो, तो उस अवस्था में आप अधिक से अधिक भक्ति का जो यू नो एक्टिविटीज है, परफॉर्मेंस, वो अच्छे ढंग से कीजिए. दिस इज पीक टाइम, देन यू कैन डू द मैक्सिमम. जैसे हमारे जो गुरुजन है, वो आप देखिए जब ये जवान थे तो वो मुझे स्मरण है कभी तीन तीन दिन तक 24 घंटा मीन्स 72 घंटा, तीन दिन 72 घंटे तक बिना सोए काम किया हुआ है प्रभुपाद के शिष्य ने. 72 hours विदाउट स्लीपिंग सेवा किया हुआ है. आई एम टॉकिंग अबाउट गोपाल कृष्ण महाराज, ही हैज डन दिस जब वो यंग एज में थे. सो एंड नाउ यू सी जयप्रताका स्वामी, उनका फिजिकल फंक्शन सब डिस्टर्ब हो रहे हैं अभी, उनकी एक्टिविटीज लिमिटेड हो रही है. पहले की तरह वो दौड़ नहीं पा रहे, लेकिन जब वो यंग थे तो उन्होंने बिल्कुल इसी तरह से कार्य किया हुआ है. एक दिन में तीन तीन कंट्री घूमना ये कॉमन बात थी, एक ही दिन में सुबह इस कंट्री में. आई रिमेम्बर जयप्रताका महाराज का भी कॉमन था, और जब मैं नया नया जुड़ा था तो मुझे स्मरण है कि जन्माष्टमी के दिन गोपाल कृष्ण महाराज ने तीन कंट्री में तीन लेक्चर दिए थे, जिसका एंड इंडिया था. शुरुआत किया था और किसी कंट्री में, मॉर्निंग क्लास, नून का क्लास दिया था और किसी कंट्री में, और एंड हुआ था शाम को दिल्ली में आके, दिल्ली या बॉम्बे आके. तो ये उन दिनों की बात हम कर रहे हैं जब वो थोड़े यंग थे, आई मीन 20 साल पहले की बात कर रहे हैं. तो हालांकि हम आपको ये नहीं कहते कि आप तीन देश में एक ही दिन में घूम के आओ और प्रचार करो, सेवा करो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हमारा जो मैक्सिमम एफर्ट है वो हमें लगाना चाहिए, मैक्सिमम एफर्ट. बाकी भौतिक चीजों का जो आकर्षण है ना, वो तो आता जाता रहता है, उसके लिए आप में परेशान नहीं होना चाहिए. ये मत सोचो नहीं मैं ये कैसे, मेरा आसक्त हूँ मैं, ये चीज तो मुझे प्राप्त करना ही पड़ेगा. छोड़ो इसको, मेक योर माइंड स्ट्रांग, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. आपको केवल ना बोलना है उसको, और कुछ नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू से नो, दैट्स इट. यू नो आपके माइंड, आपका माइंड कहेगा कि थोड़ा रिलैक्स कर लो भाई, इतना क्या काम करोगे, इतना क्या सेवा करोगे. जैसे 7 दिन भक्तों ने अभी ब्यूरो मीटिंग के लिए सेवा किया, तो अभी अगर ब्यूरो वाले अगर ये बता देते ना एक बार एंड 17 तारीख को कि हम चाहते हैं कि मिड टर्म मीटिंग अभी कंटिन्यू कर दे, यहाँ पर 7 दिन और मीटिंग कर ले, तो शायद हमारे भक्त बेहोश हो जाते. इतनी सारी सेवाएं भक्तों ने की थी, राइट, सो मेनी सर्विसेज दे परफॉर्म. लेकिन जैसे आप 7 दिन इतना सारा सेवा किया, इन भक्तों का तो जीवन ही ऐसे चल रहा है. ये जो भक्त लोग पूरे ट्रैवल प्रीचिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, इन लोग का पूरा लाइफ इस तरह से चलता है, पूरा जीवन ऐसे चल रहा है. तो दिस काइंड ऑफ मूड वी शुड ट्राई टू कल्टिवेट. अभी क्या कहते हैं आगे, रीड भगवद गीता अगेन, टेक द नोट्स, कलेक्ट द वर्सेस, इंस्पायर विच इंस्पायर यू द मोस्ट, चैंट योर हार्ट आउट in front of the beautiful Krishna Balaram deities and serve your Guru Maharaj to the best of your ability. He says, क्या कहता है कि आप अपने हृदय को पूरा खोल करके कृष्ण बलराम या गोनेता के सामने उसको प्रस्तुत करो, और आपके गुरु महाराज का आपकी पूरी क्षमता, या शायद क्षमता से अधिक सेवा करो। कई बार हमारी समस्या क्या होती है कि हम पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा अटैचमेंट है, लेकिन पूरी क्षमता का आपका शरीर ना बोलने लगे बस अब नहीं हो सकेगा तुमसे, गिव योर बेस्ट। पर एक्चुअली यही स्पिरिट हमें चाहिए, यही स्पिरिट हमें चाहिए। दिस इज लाइक आर्मी मैन स्पिरिट, यही स्पिरिट हमें चाहिए, जिसमें शांति से बैठने का टाइम नहीं होता किसी के पास। What further he says, then you will be safe and peaceful all of your life and at the time of death, and your mind will be fixed as well as your destination will be fixed. Don't lose a minute. There is no time to waste. The clock is ticking. Death is the most serious thing in your life. That is what we have to prepare ourselves for. He says, एक मिनट का भी वेस्ट मत करो, क्योंकि ये जीवन में मृत्यु से अधिक गंभीर बात और कोई नहीं है। और हमारी समस्या क्या है कि हम ये स्ट्रेस फील करते हैं ना, एंग्जाइटी फील करते मृत्यु की, इसलिए उसको रिलैक्स करने के लिए हम इल्यूजन पसंद करते हैं, इल्यूजन मोहग्रस्त होना पसंद करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दुखी होता है तो एक दो पैग मार लेता है क्यों सोचता है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, पेन किलर का काम करेगा, दुख भूल जाऊंगा मैं, ऐसा वो सोचता है। तो हम ऑलरेडी फंसे हुए हैं, लेकिन हम इस एंग्जाइटी को भूलने के लिए टीवी, मैगजीन्स, क्रॉसवर्ड्स, ये सब, आईपीएल, ये सब चीज हम ट्राई करते हैं, वी आर ट्राइंग इट हमारे एंग्जाइटी को भूलने के लिए। कि हमारी एंग्जाइटी क्या है कि मृत्यु सामने खड़ा है, बस तैयार, कभी किसी भी क्षण हमें बेल बजेगी कि ओके नाउ इट्स योर टर्न, कभी भी बोल सकते हैं। लेकिन वो एंग्जाइटी से बचने के लिए हम ये सब प्रकार का करते हैं। सो दिस इज वेरी वंडरफुल पॉइंट भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज हैज गिवन। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है भगवान के चिंतन करना ध्यान से। अगर हम ये अवसर जो है वो खो देंगे तो हमें बहुत बड़ा पछतावा होगा, हाय हाय मुझे सब प्राप्त हुआ था, मैं इस्कॉन में माला जप करता था, इस्कॉन में भक्त था, दीक्षा लिया हुआ था, मैंने 2007 की ब्यूरो मीटिंग में सेवा भी दी थी, और मैंने सब प्रकार के सेवा किए थे, लेकिन अंत में मेरे पांव फिसल गए और मैं भगवान का क्या हो गया, चूहा आया क्या, क्या चाहिए आपको, सो मृत्यु का जो भय है वो बहुत ही भारी होता है, और मृत्यु का जो अनुभव है वो बहुत भारी होता है। ये नहीं सोचना कि मृत्यु शांति से होता है, ये नहीं होता है। मृत्यु के समय पे आपको पता है कितना कष्ट होता है, 10,000 विंशी एक साथ कर आपको काटते हैं। इसलिए हमें फालतू चीज़ों से आसक्ति तो ऐसे ही निकल देनी चाहिए। पैट्स रखने की तो गलती कभी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, मैं और मेरा कुत्ता अरे वो ऐसा बताए ना, हमें पहले से प्री इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कि अगले जन्म में मैं कुत्ता ही बनने वाला हूँ, ऐसे पहले से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं हमें आपको सोचने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा ऐसे कि तुम्हारे कर्म से तुम कुत्ता बनोगे, पहले से बता दिया कि मैं अगले जन्म में कुत्ता ही बनने वाला हूँ। इसलिए ऐसी गलतियाँ मत कीजिए कि जिससे मन आसक्त हो जाए किसी चीज़ में। अगर कभी आपका मन आसक्त हो गया है और भगवान की कृपा से अगर वो ऐसा अवसर मिल गया कि वो आसक्ति टूट जाती है, तो आप भगवान का आभार प्रस्तुत कीजिए कि आपकी आसक्ति टूट गई। दुखी मत होइए कि हाय हाय क्या करे ये चलो बसा, ये डोंट वरी इट्स गुड, अच्छा है। मृत्यु उसी को अच्छा माना जाता है जो आपके रिलेटिव से दूर होके हो, उसे उसी को अच्छा मृत्यु माना जाता है, ना कि आपके सब सारे रिलेटिव आपके साथ हो। इस मृत्यु को अच्छा नहीं माना गया था। सो वी शुड ट्राई टू क्रिएट द डीप इम्प्रेशन इन द हार्ट अबाउट कृष्णा, एंड दैट इज पॉसिबल बाय एग्जीक्यूटिंग यू नो द डिवोशनल एक्टिविटीज एवरी सिंगल डे। धीरे 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 ये परिणाम प्राप्त होगा कि हमें अंत के समय में भी कृष्ण स्मरण आएंगे। एक भक्त ने एक बार मैंने ही प्रश्न पूछा था, और एक भक्त ने प्रश्न पूछा एक बार एक कि क्या हम पूरा समय भगवान की सेवा करें और अंत में भगवान का चिंतन करना लास्ट में परी फेल भूल गए तो क्या करना चाहिए। तो मैंने धन्यवाद प्रभु ने मुझे उत्तर दिया था इस क्वेश्चन में, वो कहे कृष्ण ऐसे बच्चों की तरह नहीं है। देखो अभी कहाँ क्या हुआ, तुम अंत के समय भूल गए, ठहरो अभी मैं लॉ बुक खोलता हूँ, फिर तो लॉ बुक खोलेंगे, अंत काल जो मामले में नहीं हुआ है सॉरी यू कैन नॉट कम, तुम मेरे पास नहीं आ सकते। भगवान ऐसे नहीं है, कृतज्ञ नहीं है, बच्चों की तरह नहीं है ना, अब नहीं होगा जा, तुमने अंत में मेरा चिंतन नहीं किया है, अब तो तुझे इसका परिणाम होगा। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक अ चाइल्ड। तो भगवान क्या करते हैं, आपको अंत समय में अगर आप भूलने का प्रयास करोगे ना तो मर्सी पॉइंट दे देंगे, मर्सी पॉइंट यू रिमेम्बर याद करा देंगे। अगर फिर भी अगर आप याद नहीं कर पाए और यमराज के दूत आएंगे तो भी भगवान उसको बोलेंगे डोंट, क्यों, क्योंकि इस भक्त ने बहुत सेवा किया है मेरे लिए, मैं इसको भले वो चिंतन नहीं कर पाया अंत में कोई बात नहीं, मैं उसको ले जाऊंगा। इज लाइक दैट, ये केवल चैतन्य महाप्रभु करते हैं। अगर आप भूल गए गलती से, इंटेंस नहीं है आपका, इंटेंशनल नहीं किया आपने गलती से, यू नो किसी कारण से भूल गए, तो भी चैतन्य महाप्रभु आपको उद्धार कर देंगे, ये निश्चित है। और ऐसा भी माना जाता है कि दैट पर्टिकुलर मोमेंट मृत्यु के समय पर यू नो आप शुद्ध हुए या नहीं हुए ये सब नहीं देखा जाता। मृत्यु के समय पर आपकी मनोस्थिति किस भाव की होती है वो देखा जाता है। अगर आप भले शुद्ध ना हो, आप में अनर्था है, आप में पाप की वृत्तियां है, ये सब है, लेकिन अंत समय उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो या चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हो कि आप उनकी सेवा करना चाहते हो, या प्रभुपाद से प्रार्थना करते हो कि आप उनकी सेवा करना चाहते हो, तो वो भाव को देखा जाता है, आपके कर्मों के हिसाब को नहीं देखा जाता। तो इसलिए हमें ये परिणाम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम पूरा समय कृष्ण भावना न लें और भौतिक आकर्षणों से नहीं आकर्षित हो, क्योंकि भौतिक आकर्षणों का तो काम ही यही है टाइम पास करना। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए तो लोग सब खड़े हैं, यू नो आप कहीं पर भी नजर डालो, बाहर जाओगे तो बाहर बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, आप मोबाइल में नजर डालो वहां पर भी इंटरनेट मोबाइल ये वो सब जगह न्यूज़पेपर सब जगह, वो लोग का काम क्या है, उन लोग का काम है आपका टाइम वेस्ट करना, आपका समय बर्बाद करना, यही तो उन लोग का काम है। वो दे आर सक्सेसफुल इन देयर बिजनेस, अगर वो हम उनकी बात सुनते वो अपने बिजनेस में सफल होता है और हम अपने बिजनेस में फेलियर हो जाते हैं। हमें अपना अपने बिजनेस को संभालना चाहिए, उनको उनके बिजनेस को संभालना चाहिए। सो वी शुड ट्राई टू वी शुड लर्न टू से नो टू माया। बहुत आसान है, जस्ट से नो, दैट्स इट, जस्ट से नो, सॉरी मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, जस्ट से नो।
प्रभु जी तो ये भरत महाराज के केस में पूरा इन्होंने जीवन तो वैसे तो भाव से ही भगवान के भजन किया, अंतकाल में वो अगर चूक गए तो भी उनको हिरण का
एग्जांपल, हमें एग्जांपल प्रस्तुत करने के लिए भरत महाराज को निमित्त बनाया गया था कि अगर आप अंत समय में ऐसी गलती कर भी दोगे तो ये मत सोचो कि यू नो सब पोलम पोले ऊपर नहीं आपको कर्म के जो नियम है उसका पालन तो करना पड़ता है, इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे तो महाप्रभु करते ही है ना कृपा आप, अंत समय में अगर भगवान का चिंतन नहीं करेंगे तो क्या हो गया, करते ही है ना, इसलिए हमें अभी गंभीर नहीं बनेंगे। तो वो भाव तो देख लिया ना भगवान ने, आपकी वो भावना तो भगवान ने देख ली ना पहले, तो फिर भगवान थोड़ी आपके हाथ में आने वाले। अगर आपकी भावना अंत तक श्रेष्ठ रहती है तब जाके आपको ये परिणाम प्राप्त होता है। अगर हम चीटिंग करने का प्रयास करेंगे तो हम अपने आप को धोखा दे बैठेंगे। भरत पाज का जो एग्जाम्पल है वो तो एक्सेप्शनल केस है, और उनको तो पूर्व जन्म का स्मृति भी था दूसरे जन्म में, हमें ऐसा स्मृति का अवसर नहीं मिलेगा कि अगर हम हिरण बनेंगे तो हम हिरण ही बनेंगे। तो इसलिए जैसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, मैं कई बार प्रचार में कहता हूँ कि एक व्यक्ति बिजनेसमैन था और अंत में उसने मृत्यु के समय पे उसको पहले बहुत बताया गया कि तुम चिंतन करो भगवान का, अभी से शुरू कर दो। तो उसने बोला कि नहीं, वो जजा मिलने किया था अंत में, मैं भी कर लूँगा। तो अपने चारों बेटियों का नाम भगवान के रख दिए। तो जब उसका मृत्यु का समय आया तो उसने अपने बेटों को बुलाना शुरू किया, राम लक्ष्मण सबको बुलाना शुरू किया, चारों के चारों बेटे वहाँ पर हाजिर हो गए। जब वे हाजिर हो गए तो उसने सीधा बोल दिया, अगर तुम सभी इधर आ गए तो फिर मेरे बिजनेस को कौन संभाले। जैसे बोल दिया वहीं पर उसका शरीर अंत हो गया। हम सोचिए, तो भगवान को धोखा नहीं दे सकते आप, यू हैव टू प्रैक्टिस। अभ्यास करने से ये संभव हो सकता है, प्रैक्टिस इज वेरी सिंपल। आप समझो, आप जब पहली बार आप नए नए साइकिल बाइसिकल चलाना सीख रहे थे तो आपको आता था, पहली बार जब हाथ लगाया तो आपको डर भी लगता होगा, हाय हाय गिर गया तो, चोट लग गई तो, इतना बड़ा साइकिल कैसे पैडल लगाने, ऐसा सब माइंड में होता है ना। दूसरे लोग को देखते हुए तो दोनों हाथ उठा के चलाता है, होता है ना कई बार ऐसे। तो उसमें कुछ है नहीं, देयर इज नो साइंस, नो सम मिस्ट्री, इट्स जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस, राइट। आप अभ्यास करो फिर आपको लगेगा हाँ इट्स नॉट अ बिग डील, राइट, आपको लगता है। सेम वे अगर हम अभ्यास करेंगे कृष्ण भावनामृत का, सुनो कृष्ण भावनामृत से, लिसन, इम्प्रूव योर इनपुट्स, यू नो, आप सुनो कृष्ण भावनामृत से, करो ध्यान से जब करो, व्हेन यू नो द ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग देन व्हाई वी डोंट चैंट नाइसली, इम्प्रूव इट, देन द प्रैक्टिस विल बी देयर, देन यू कैन रिमेम्बर। सो सातवें श्लोक में भगवान और एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, वो पढ़िए।
अतः एव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे।
तस्मात् सर्वेषु कलेषु माम् अनुस्मर यद्यच्छ। भगवान कहते हैं तस्मात्, तस्मात् शब्द का अर्थ होता है कि इसके आगे इन्होंने जो कुछ बताया उसके बाद ये चीज बताई जा रही है ना। तस्मात् का अर्थ है इसलिए, क्योंकि जो व्यक्ति अंतकाल में हुआ उसके बाद वाले यम यम वापी, जो जिस भाव से शरीर त्याग करेगा उस भाव से, वो जो लास्ट वाला श्लोक हमने चर्चा की, जो ये साइंस इसी तरह से काम करता है। अगर आपकी एक्टिविटीज का पूरा समझ निकालने के बाद, पूरी लाइफ के एक्टिविटीज का ऐसा परिणाम प्राप्त हुआ कि आपको कुत्ते का शरीर प्राप्त होना चाहिए, है ना, तो उस समय की मनोस्थिति अंत में ऐसी हो जाएगी कुत्ते जैसी, तो आपको कुत्ते का शरीर मिल जाएगा। इट इज लाइक दैट, पूरा जो सेंसेक्स होता है जैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वैसे आप कर्म करते हो रोज आपका सेंसेक्स चेंज होता है। जैसे जैसे आप कर्म करते रहते हो वैसे वैसे आपका नेक्स्ट बॉडी का जो जो पिक्चर है ना, फोटो चित्र, वो बदलता रहता है। व्हाइट व्हाइट सफेद कुत्ता, काला कुत्ता, जैसे फिर ये अलग अलग प्रकार के शरीर, कभी गधा बन गया, कभी पक्षी बन गया, कभी देवता बन गया, कभी मनुष्य बन गया, ऐसे अलग 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 शरीर चेंज होते जाते हैं रोज, एवरी मोमेंट चेंज होते जाते हैं। लेकिन अंत में पूरा जो समरी आता है उस समय, जो लास्ट में जहाँ पर साइकिल स्टॉप होती है, वहां पर जो शरीर का चित्र वहां पर रहता है, दैट यू गेट
बैलेंस इट।
हाँ, बैलेंस इट, व्हाटएवर इज लेफ्ट दैट इज, जहाँ पर आपका ये चेंजिंग फोटो अटक जाता है वहां पर जो अटक जहाँ अटका हुआ है वो चीज आपको भाई आपको ये मिला। तो ये सब बताने के बाद भगवान कहते हैं तस्मात सर्वेशु कालेशु, हमेशा क्या करना चाहिए, मां मनुस्मर और युद्ध च, दो चीज बताइए। और इंटरेस्टिंग क्या है कि पहले मैं मां मनुस्मर, कई बार भक्त लोग पूछते रहते हैं हमें क्या करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए या कर्म करना चाहिए, कई बार ये भक्त लोग पूछते रहते हैं। तो ये हमें दोनों करना चाहिए, क्या ये आवश्यक है कि हम कर्म करते समय भगवान का चिंतन करें या फिर कर्म करते रहे और फल भगवान को अर्पण कर दे, क्या करना चाहिए। देखिए हम ऑफिस में होते तो भगवान को चिंतन करना मुश्किल हो जाता है, तो क्या करें, घर में चिंतन कर लेंगे, ऑफिस में नहीं करेंगे, ऐसा चलेगा। तो भगवान ने कहा नहीं चलेगा, तो भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध च, एंड दोनों मिस, एक नहीं, दो में से कोई भी एक नहीं है, ये दोनों ही करना है। अभी हमें पता है कि मुश्किल है करना, लेकिन अगेन अभ्यास से ये हो सकता है, अभ्यास से चिंतन करना है कृष्ण का, भगवान का चिंतन करना है निरंतर, जैसे यशोदा माता चिंतन करते रहते थे निरंतर, इट शुड, इट इज, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस। कौन से आप, कौन सी चेतना के मंच पर खड़े हो ये देखा जाता है, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मैं कई बार इस चीज को बता चुका हूँ, जैसे समझ लो कि जब अगर यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आ गया तो उस समय सबकी चेतना अर्थक्वेक कॉन्शियसनेस हो जाती है, राइट, सबके मन में एक ही बात, एक ही चीज रहती है, अर्थक्वेक आया था, ये हुआ था, वो नुकसान हुआ था, इसके यहाँ वो हुआ, वहाँ पर इतने मरे, ये यही चीज आपके माइंड में रहती है, और दैट इन्फ्लुएंस योर बॉडी माइंड एंड इंटेलिजेंस एवरीथिंग, इट वो कॉन्शियसनेस लेवल हो गया, चेतना का एक प्लेटफॉर्म है ना। तो हमें एक एग्जांपल हमने आपको बताई है, तो लेकिन दूसरा होता है, आई कैन गिव अनदर एग्जांपल, जैसे कोई लैला मजनू है तो वो लैला की कॉन्शियसनेस में और मजनू की कॉन्शियसनेस में पड़ा रहता है, उसको आंखें बंद करे आंखें बंद करे तो भी उसका दर्शन होता है, इधर होता है, मैंने देखा ऐसे पागल लोगों को, हसीन दे रहे ना, सोते जागते यार जहां जहां नजर पड़े वहां केवल तू ही दिखाई दे रही है। तो ये कॉन्शियसनेस लेवल है, दिस इज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो दैट शुड बी कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में हमें रहना चाहिए। प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रेश्वर ठाकुर एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब व्यक्ति जब कोई स्त्री का अपने पति को छोड़ करके किसी और पुरुष के साथ अगर उसका अफेयर है तो वो अपने पति की जो सेवा है वो साधारण रूप से और अच्छे ढंग से करती है। She does her activities much much better way than normal, ताकि उनको बिल्कुल भी शक ना हो कि my mind is moving somewhere else, और उसका मन निरंतर दूसरी जगह होता है, वहां पर नहीं होता। This example is given by Vishwanath Chakravarti Thakur। क्या कहते हैं वो कि जब भक्त होता है उसका मन निरंतर कृष्ण में रहता है, इसलिए वो अपनी जो नित्य कर्तव्य कर्म होते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से करता है। इट इज वेरी नाइसली एवरीथिंग, बहुत अच्छे से करता है, और अदर ही कैन डू एवरीथिंग नाइसली, क्योंकि वो पीसफुल होता है ना। कृष्ण भक्त निष्काम, वो पीसफुल होता है, शांत, उसका मगज मन शांत होता है। तो शांत मन से आप कुछ भी करो तो अच्छा ही होगा, शांत मन से। तो भक्त का मन शांत होता है, उसका मन कृष्ण में लगा रहता है, इसलिए उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उसका स्ट्रेस लेवल नहीं होता है। सो इसलिए हमें निरंतर कृष्ण भावनामृत में अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करना है। नाम अनुस्मर युद्ध च, एक्टिविटीज भी भगवान को चिंतन करते करते करनी है, शुड नॉट डू विम्सिकली। इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ ड्यूटी, इट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट श्लोक।
हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है।
हाँ, इस श्लोक का क्या है शुरुआत?
अभ्यास योग।
हाँ, अभ्यास योग युक्त है ना। इस श्लोक में कहा गया है कि जो मेरा चिंतन करते हैं, ये योग मिश्र भक्ति है ना, तो यहाँ पर मेडिटेशन की बात भी आती है बार बार, आगे मेडिटेशन का वो एक आज्ञा चक्र का भी आएगा। तो जो मेरा पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में चिंतन करता है और मेरे में मन उसका लगा हुआ है और अपने पास मार्ग से बिल्कुल वो अविचल होकर लगा रहता है, मेरा वो मेरे पास आता है तो मुझ में मन लगा के रखता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थिंक ऑफ मी, पहले आया था ना थिंक ऑफ मी, अभी भी आया थिंक ऑफ मी, कि मुझे चिंतन करो, मेरा चिंतन करो, मुझे मुझे याद रखो, भूलो मत मुझे। ऐसे सारे शास्त्रों का यही निर्देश है, मन मना भव मत भक्तों, दिस इज द कॉन्स्टेंट, यू नो। हमारी क्षमताएं, हमारी जो त्रुटियाँ, हमारी आसक्तियाँ, हमारी सब कुछ अलग अलग होती है। हमारा यू नो मेरा क्षमता अलग है, आपका क्षमता अलग है, इनका क्षमता अलग है, सबकी इंटरेस्ट भी अलग अलग है। आपकी मेरी कोई वीकनेस है, आपकी कोई वीकनेस है, इनकी कोई वीकनेस है, सबकी अलग अलग वीकनेस होती है, क्षमता भी होती है। लेकिन हमें ये सब चीज़ों का उपयोग करके भगवान का चिंतन करने में ही लक्ष्य को स्थिर करना चाहिए। हमारे सारे भी लिमिटेशंस है, यू नो, कई बार हम लिमिटेशंस में अटक जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरा ये सीमित सीमा है, मैं इससे आगे, यू नो, आप इंस्पायर हो सकते हो किसी भक्त से कि ये भक्त इतना अच्छा सेवा करता है, इसका इतना अच्छा मन है, इतने अच्छे ढंग से आप इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन आप फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं सीमित हूँ, मेरी सीमाएं हैं, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन भगवान के लिए कोई सीमाएं नहीं होती, भगवान आपकी हर एक सीमाओं को हटा सकते हैं। मुकम करो थी बाहर जाना भंगों में लग गए थे, तो इसलिए हमें निरंतर कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। सर्व विधि निषेध एक ही सर्व किंकर, क्या है, एक ही विधि निषेध है, क्या है, हमेशा भगवान का चिंतन करो, हमेशा याद रखो, और कभी भी भगवान को भूलो मत। कृष्ण का चिंतन करो और कृष्ण को भूलो मत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सारे रूल्स रेगुलेशन कौन है, ये मुख्य बात है। व्हाट थिंग, व्हाट, हु इज सिटिंग इन आवर माइंड, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये कृष्ण का चिंतन हमें करना चाहिए, यही विधि निषेध है, और कोई विधि निषेध नहीं है। और ये चिंतन करने से हमारा जो भौतिक प्रकृति में आसक्ति है, भौतिक जो अवस्थाएं हैं, उससे शुद्ध हो सकते हैं। जैसे लोहा अगर अग्नि के साथ रहता है तो धीरे धीरे वो अग्नि में बन जाता है, उस तरह से आप बार बार कृष्ण का चिंतन करते रहते हो, बार बार भगवान के नाम का उच्चारण आपके मुख से होता रहता है, तो स्वभाव ये परिणाम आ जाता है कि आप उसी व्यक्ति का क्वालिटी प्राप्त कर लेते हो, परम पवित्र भगवान, परम पवित्र। अगर आपके मन में निरंतर कृष्ण रहते हैं, निरंतर कृष्ण रहते हैं, चैतन्य रहते हैं, निरंतर आपके मन में रहते हैं, तो आपको माया या भौतिक प्रकृति छू भी नहीं सकती, है ना। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ये मत सोचना कि आप इसमें नुकसान होगा, नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, बट यू हैव टू जस्ट मेक एन एफर्ट दैट यू कैन कीप कृष्ण ऑलवेज विद यू, ऐसा प्रयास करना है बस। इट कम्स बाय प्रैक्टिस, बट दैट प्रैक्टिस, द डिजायर फॉर द प्रैक्टिस विल बी देयर। मुझे करना है, आई वॉन्ट टू डू दैट, ये प्रैक्टिस मुझे करना है, देन यू कैन गेट सक्सेस। जैसे कोई व्यक्ति को फिजियोथेरेपी करने को बोलते हैं ना, जब बीमार होता है फिजियोथेरेपी को, उसको बहुत कष्ट होता है, वो ना बोलता है, यू विल नॉट लाइक इट, उसको अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर बोलते हैं, उसके रिलेटिव्स बोलते हैं, तो उसको पेनफुल लगता है, और कई बार तो गुस्सा हो जाता है, व्हाई यू आर आस्किंग मी, क्यों कहते हो मुझे ये सब करने के लिए। सो बट सम पेशेंट जिनका थोड़ा ऐसा विगरस माइंड होती है, वो कहते हैं कि नहीं, भले ही मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आई हैव टू स्पेंड टाइम, इसके अंदर मुझे करना पड़ेगा। दे मेक देयर माइंड एंड दे डू, एंड व्हेन दे डू दे गेट क्योर। कष्ट होता है लेकिन करते हैं, तो परिणाम आता है कि वो सफल हो जाते हैं, उनके रोग जल्दी दूर हो जाती है। So we have to make our mind. It's all mind game, nothing else. We have to just tell your mind, yes, we'll do it. You know. So, ये कैसे संभव है? 10 प्रकार बताए गए भगवान ने चिंतन करने के। पढ़िए अगला श्लोक।
मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष, अज्ञान सर्वज्ञ, पुरातन नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष में पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है।
तो यहाँ पर 10 अलग अलग तरीके बताए हैं जिससे आप भगवान का चिंतन कर सकते हैं, है ना। 10 अलग अलग तरीके हैं भगवान को चिंतन करने के लिए, ऐसे तो अनेक अनेक तरीके हैं, चार्जिंग का अनेक तरीके हैं। इसमें से हम अगर हम आप बात करें तो पहला क्या है, भगवान सर्वज्ञ है ना। कवि शब्द का अर्थ होता है कि वो सब कुछ जानते हो, भूत वर्तमान भविष्य। भगवान को पता था कि आगे क्या होने वाला है, तो पहले से उसका प्लान बना के दे देते। महाभारत में भी आप देखते हो कि भगवान ने ऐसे कई जगह पर ऐसा हुआ है, भगवान ने पहले से ही अरेंज करके दे दिया सब कुछ, बिकॉज ही नोज द फ्यूचर, ही नोज योर पास्ट ऑल्सो। भीष्मदेव को ये कौन मार सकती है, अंबा, ही नोज द पास्ट, क्योंकि भीष्मदेव का पास्ट क्या है उनको पता है, और शिखंडी का पास्ट क्या है वो भी उनको पता है। सो ही नोज द पास्ट, ही नोज द फ्यूचर, ही नोज द प्रेजेंट ऑल्सो। भगवान को हमारे विषय में सब कुछ पता है, तो इस तरह से आप भगवान का चिंतन कर सकते हो। दूसरा है पुराण, पुराण है ना, नेक्स्ट इज
पुरातन,
पुरातन। तो पुरातन शब्द का क्या अर्थ होता है, कि जो अत्यंत पुराने हैं। तो क्या बूढ़े होंगे ऐसे दाढ़ी वाले, मुस्टे और चश्मा वाले, और करते हो हाथ में यू नो लकड़ी लेके घूमते, ऐसे ही भगवान नहीं, वो सबसे पुरातन है, फिर भी हमेशा नवयुग बना रहते, हमेशा यंग रहते हैं। फिर वो नियंता है, वो सबसे सारी प्रकृति का, सूर्य चंद्र जो है वो, उसका नियंत्रण भगवान करते हैं, भोजन जो होता है, अब भोजन में स्वाद आता है चंद्रमा के कारण, लेकिन चंद्रमा कौन है? भगवान का आंख, भगवान का अंश, भगवान के कारण होता है। तो ऐसे हर एक चीज में आप डाइजेशन पावर हमारा, भोजन लेते हैं अगर हमारा डाइजेशन वीक होता है तो हम पाचन नहीं कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो वो डाइजेशन का शक्ति कौन देता है? तो भगवान देते हैं, राइट। तो हर एक वस्तु में हमारी जो आईलिड्स जो होती है ना, ये बंद होता है खुलता है, तो ये जो शक्ति है आँखों की शक्ति, ये आँखों की शक्ति भगवान के द्वारा प्राप्त होती है, भगवान हमें देते हैं। और अगर वो शक्ति नहीं रहेगी तो आप आँख भी बंद नहीं कर सकते, क्या ना? सेम थिंग, एवरी ऑल द मोमेंट्स ऑफ योर बॉडी, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड। भगवान के कारण ही हो सकता है ये, इसलिए भगवान के भक्त होता है वो कृष्ण पर डिपेंड करते हैं। टेक द मेडिसिन, डिपेंड ऑन कृष्ण। फिर स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, आत्मा का कद क्या है? उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, है ना? बाल के अग्रभाग को 10,000 ऐसा पता नहीं क्या साइज बनाया भगवान ने। इस स्थूल आंखों से आप नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। आप कितना भी अच्छा इंटरनेशनल माइक्रोस्कोप लेके आओ, कुछ नहीं होने वाला, यू कांट सी। एंड कृष्ण इज द स्मॉलेस्ट। अणोर अणियान महतो महियान, अणोर अणियान, सबसे छोटे, जो सबसे छोटा कारण वही आत्मा, दैट इज द स्मॉलेस्ट इन ऑल क्रिएशन, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। फिर भी उसको अभिमान रहता है, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। होता एकदम स्मॉलेस्ट, लेकिन वो सोचता है आई एम द ग्रेटेस्ट। और उससे भी छोटा है भगवान, स्मॉलेस्ट, कृष्ण इज द स्मॉलेस्ट। कृष्ण सबके नियंता है, भौतिक प्रकृति, भौतिक चीजों से पर है, भौतिक जो कंसेप्शन से पर है, अचिंत्य है भगवान, अचिंत्य है उनका स्वरूप, अचिंत्य है उनकी लीला, अचिंत्य है उनके कार्य, अचिंत्य है वो, उनके विषय में जो कुछ भी वर्णन हम करें वो सब अपूर्ण रहते हैं। हम बहुत विश्वास चक्र ठाकुर कहते हैं कि भौतिक रूप से हम एग्जाम्पल देने के लिए बताते हैं कई बार, अभी जो चीज आपने देखी है उसी का एग्जाम्पल यूज करके बताना पड़ेगा ना, तभी आप समझ पाएंगे। लेकिन जो आपने देखा ही नहीं है उसका एग्जाम्पल कैसे करें? इसलिए शास्त्र में भगवान के लिए तुलनात्मक एग्जाम्पल दिए गए हैं कि भगवान जैसे चलते हैं तो मदमस्त हाथी की तरह चलते हैं, लेकिन भगवान के चलने का जो सौंदर्य है, जितना मधुर चाल जो होगी, वो बोलने से नहीं पता पड़ेगा, वो तो वहां पर आप जब जाओगे देखोगे तब आपको पता पड़ेगा कि एक्चुअली कैसे होते हैं। भगवान का सौंदर्य घनश्याम है और उनकी कर्ली हेयर है, ब्लूइश हेयर है, उनके बाल घुंघराले हैं और ब्लूइश है, थोड़े ब्लू कलर जैसे उनका शेड है भगवान के, और बहुत सॉफ्ट है, कोमल है उनके बाल। तो ये ऐसे वर्णन हम आपके सामने करते हैं, लेकिन इससे आप हनी की बॉटल को बाहर से चाटने के बराबर है, इसके से स्वाद नहीं पता पड़ेगा कि वास्तव में भगवान कितने सुंदर है। तो भगवान अचिंत्य है। कई बार हमारे लोग, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, बोलो वृंदावन में कैसा होगा, वैकुंठ में कैसा होगा। तो कई बार दो तीन बार, एक बार एक भक्त ने बहुत प्रश्न पूछा, तीन चार बार पूछा, तो फिर मैंने कहा भाई मुझे भी जाना बाकी है, जब जाऊंगा तो बताऊंगा। डोंट स्पेक्यूलेट, आई डोंट, अब तर्क मत करो, स्पेक्यूलेट मत करो।
भागवत में वर्णन है,
हाँ वर्णन है, लेकिन वो वर्णन के आधार से आप अपना चिंतन मत यूज करो, ताकि तर्क मत बनाओ। डोंट स्पेक्यूलेट इट, आई मीन व्हाट इज गिवन इन स्क्रिप्चर, एक्सेप्ट दैट, बट डोंट क्रिएट समथिंग कि ऐसा होगा ऐसा होगा। ये केवल जो मैन फ्रॉम वैकुंठ जैसे प्रभुपाद जैसे लोग होते हैं, वो लोग आपको सही बता सकते हैं कि वैकुंठ में कैसा होता है। एक बार प्रभुपाद को हवाई या बीच पर बैठे थे, तो वहाँ ठंडी हवा आ रही थी, आई फॉरगॉट द प्लेस, तो वहाँ से ठंडी हवा आ रही थी, और इतना भी ठंडा नहीं था कि आपको ठंडा लगे, और गर्म में था, ठंडी हवा आ रही थी। प्रभुपाद ने ऐसे ही बोल दिया, he just said कि दिस इज एग्जैक्टली रिमाइंड मी ऑफ वैकुंठ, ये मुझे वैकुंठ का याद दिला रहा है। एग्जैक्टली जस्ट एग्जाम्पल प्रभुपाद ने बताया था। सो ऐसे जो लोग होते हैं वो आचार्य महाभागवत वो सब आपको कह सकते हैं कि गोलोक वृंदावन में कैसा होता है, बट डोंट स्पेकुलेट, इज अचिंत्य, इनकंसीवेबल होता है अचिंत्य, इसमें स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। एंड ही इज अ पर्सन, यू नो, वो व्यक्ति है, सूर्य की तरह प्रकाशित है, आध्यात्मिक है पूर्ण रूप से, उनका शरीर में हमारी तरह विकार नहीं होता, उनके बाल नहीं बढ़ते, उनको शेविंग नहीं करना पड़ता, वैकुंठ में शेविंग किट मिलता ही नहीं है, है ना। ये धंधा इधर ही चलता है गोलोक वृंदावन भौतिक जगत में, बाकी वो जिले विलेट का उधर कोई स्थान नहीं है, हाँ होता ही नहीं शेविंग की, बिकॉज देयर इज नो सच। सो ऐसे अलग अलग 10 तरीके हमें दिए गए हैं जिसके द्वारा हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, दोज आर एंगेज इन वर्शिपिंग द फॉर्म ऑफ और अर्चा ऑफ द लॉर्ड, हु आर एंगेज इन द मेडिटेशन ऑफ द लॉर्ड सिंपली बाय सिंपली फॉर लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज ऑल्सो नो बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड द पर्पस ऑफ अधिभूता ब्राह्मण। ये सब चिंतन करने के पीछे योगियों का लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना होता है, इसलिए उनको मुक्ति प्राप्त होती है, योग अधिभूत प्राप्त करते हैं। अच्छा अभी 10वां श्लोक पढ़िए।
मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है।
हाँ तो ऐसे चक्र होते हैं, कितने चक्र होते हैं, 6-7 चक्र है ना शरीर में, 7 होता है, हाँ षट चक्र होता है, 6 चक्र षट चक्र ही होगा, 6 चक्र षट चक्र ही होगा, षट चक्र योग होता है। तो नाभि से प्राण वायु धीरे 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 ऊपर आता है, यहाँ तक आ जाता है आज्ञा चक्र बोलते शायद इसको, आज्ञा चक्र, और फिर ब्रह्म रंध्र तक पहुँचता है, फिर वो प्राण वायु शरीर से बाहर निकल जाता है फट करके। तो इसलिए उनका ऊर्ध्व प्राण वायु का ऊर्ध्व गति होता है वो, और जो लोग नरक के रामी होते हैं उन लोग का प्राण वायु अधोगति करता है, तो उनका मलमूत्र के द्वारा प्राणवायु निकलता है, और जो ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है वो ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल जाता है। तो ये प्राणवायु जो है उसको ऊर्ध्व गति देना, योगिक प्रोसेस में ये चीज का वर्णन किया गया है। तो इन लोग को क्या करना पड़ता है कि ये जो अभी तक जो चर्चा हुई ना इस श्लोकों में, तो वो सब भगवान के चिंतन की विषय में बाधा चाहिए थी, तो उन लोग को लाइफ टाइम पूरी लाइफ दौरान इस तरह से भगवान का चिंतन करना पड़ता है कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंटली योग में स्थिर होकर के, तब जाके उनका लाइफ है जो होता है वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त करके मुक्ति को अवस्था प्राप्त कर सकता है योगियों का। इट्स वेरी डिफिकल्ट योगियों का जो प्रोसेस है, इट्स नॉट फॉर इजी, सत्युग की बात आप सोचिए, वेरी डिफिकल्ट, अभी के समय में तो असंभव है, हमारे सपना ही लगेगा ये, इज नॉट पॉसिबल। दिस इज ध्यान योग, अष्टांग योग से आगे का समाधि अवस्था की बात है ये। सो अभी योग विश्व भक्ति की चर्चा कर रहे भगवान।
जी ये योग से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं?
हाँ कर सकते हैं ना,
ये भक्ति की अवस्था से वैसे तो इसको ब्रह्म ज्योति में,
हाँ वो लोगों को मुक्ति मिलती है या फिर ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं, उनका जनरली यही लक्ष्य होता है। प्रेम वगैरह तो भक्ति में ही होता है, योग वो योग ज्ञान ये सब सूखा है, सब यू नो डेजर्ट जैसे रण रेगिस्तान जैसा है, वहाँ पर सरोवर नदियाँ नहीं मिलेगी, भक्ति ही वहाँ हरा भरा रहता है, वहाँ पर प्रेम होता है इसलिए। अभी आगे के जो तीन श्लोक है वो भी उसी के संबंधित है। आप पढ़िए तीन श्लोक एक साथ।
जो जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओकार का उच्चारण
ओमकार
का उच्चारण करते हैं
प्रॉपर्ली रिटन हियर, इस तरह से नहीं लिखना चाहिए।
और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि है, ये ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग में स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है।
यस, सो यहाँ पर एक तो 11वें श्लोक में ब्रह्मचर्य के प्रारंभ का एक्चुअली तीनों में बात अष्टांग योग की है। अष्टांग योग में यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, तो इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना वो यम नियम में आता है। फिर 12वें श्लोक में प्रत्याहार के विषय में बताया गया है 12वां श्लोक में। और योग प्रभुपाद इसके विषय में कहते हैं कि योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना, तो भगवान से अपने आप को जोड़ना, यही योग का अंतिम लक्ष्य होता है। और 13वें श्लोक में समाधि के विषय में और ओमकार की महिमा बताई गई है। तो ओमकार हमारे आचार्य बताते कि जो ओमकार होता है वो अउमा तीन से बना होता है ना। एक लेक्चर में प्रभुपाद बताए थे कि ना ओमकार के विषय में चैतन्य चैतन्य दिखा हुआ है कि अकार अर्थ होता है कृष्ण, उ का अर्थ होता है श्रीमती राधा रानी, और म का अर्थ होता है जीवात्मा। तो ओम औम ओम उस तरह से बनता है ओम। तो वो ओम शब्द से भक्त लोग राधा कृष्ण की पूजा करते सेवा करते। कृष्ण राधा और जीव अ उ म अ उ म तीन इकट्ठा होते तब ओम होता है। Well, this is connection with the yoga mishra bhakti, but we are also giving the devotional aspect, understanding aspect. तो इसलिए अगर ओम शब्द के ये वैष्णव अर्थ ये होता है, लेकिन बाकी आप योगियों के लिए उसका अर्थ अलग है, सबके लिए अपना अपना अर्थ है। और प्रभुपाद जी प्रत्याहार के विषय में कहते हैं प्रत्याहार का अर्थ होता है जस्ट अपोजिट। माय आईज आर एंगेज इन सीइंग वर्ल्डली ब्यूटी, नाउ आई हैव टू स्टॉप एंजॉयिंग द ब्यूटी एंड इंस्टेड सी इनसाइड ब्यूटी, दैट इज कॉल्ड प्रत्याहार। ये प्रत्याहार है। So, chanting Om is transcendental but mechanical way of getting into trance. Persons who are unable to realize the transcendental personal form of or name of the Lord because of imperfect senses are trained to practice of self-realization by a mechanical process of regulating breathing and simultaneously chanting Om. Yeah, this is in Lokkeli Yoga. कमजोर है जिनकी इंद्रिया पूर्ण है उन लोग को ओम का उच्चारण करना पड़ता है और साथ साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वो सब करना पड़ता है। वो बड़ा खुश हो जाते, मैं देखा ओ इधर करते हैं, दैट इज वन ऑफ द प्रोसेस। ये प्रोसेस है, अष्टांग योग की प्रोसेस में, ध्यान योग की प्रोसेस में, भक्ति की प्रोसेस में ये नहीं है। सो अभी तक इन विषयों में चर्चा हुई है और अंत में भगवान ने कहा माम अनुस्मरण, फिर से वही सिद्धांत को बता रहे, वही उसी चीज को बता रहे ओम शब्द से, कि यू नो इफ वन थिंक्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, अगर वो भगवान का चिंतन करता है एंड क्विट्स हिज बॉडी और शरीर त्याग करता है तो कहाँ जाएगा? आध्यात्मिक लोक में जाएगा, वो आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करेगा। अच्छा, आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करेगा तो इसलिए अभी तक योग मिश्र भक्ति बताई भगवान ने, अभी आगे वाला वही चीज जो आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति है ये इस तरह से प्राप्त किया। अभी उसको प्राप्त करने का दूसरा तरीका क्या है, आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करने का दूसरा तरीका क्या है वो भगवान बता रहे हैं। पहले एक तरीका पूरा बता दिया, अब ये दूसरा तरीका बता रहे हैं। 14 श्लोक नंबर 14।
हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है।
हाँ, अनन्य चेतता, अनन्य चेतता सतत है ना, अनन्य का अर्थ होता है हमेशा निरंतर, ये तात्पर्य पड़े दिस फॉर स्पेशली डिस्क्राइब।
इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्त अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में चार प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं रखता, नहीं करता। शुद्ध भक्त न तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष का भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उसे नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वही पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं।
सरलता से तस्य हम सुलभम, पहले अनन्य है, अनन्य का अर्थ होता है और कोई नहीं, हम अन्य, केवल मैं, मुझे, देवताओं का नहीं और किसी का नहीं। और अनन्य का दूसरा अर्थ होता है फॉलोड बाय दैट सर्वश नित्यश युमाम समझ नित्य सर, अनन्य और उसके बाद नित्यश। कोई ऐसा कह सकता है कि हाँ मैं अनन्य भाव से भगवान का चिंतन कर सकता हूँ, लेकिन एक दो मिनट के लिए नहीं, एक मिनट के लिए नहीं, नित्यश। ये निरंतर करना पड़ता है, निरंतर अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करना पड़ता है। अनन्य चेता सतत योमाम स्मरति नित्यश, उस व्यक्ति के लिए तस्याम सुलभ, लभ का अर्थ होता है प्राप्त करना और सुलभ का अर्थ होता है इजीली प्राप्त करना सरलता से। दुर्लभ का अर्थ होता है जिसको प्राप्त करना मुश्किल हो वो सुलभ हो जाता है, कैसे? निरंतर भगवान का चिंतन करके। निरंतर भगवान का चिंतन हर एक अवस्था में करना चाहिए, उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। अनडिविडेड भक्ति मुक्ति की इच्छा से रहित, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा जनावृतम, इस तरह से चिंतन करना चाहिए। भक्ति कामी मुक्ति कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम है, उसमें भुक्ति की मुक्ति की इच्छाएं नहीं है, इसलिए वो भगवान का चिंतन निरंतर भाव से कर सकता है। और नित्य शब्द का अर्थ होता है कि एंटायर लाइफ टाइम, पूरा जीवन भगवान का चिंतन करना है, पूरा जीवन एवं स्मृति नित्य सब, बस ये करते रहो और मृत्यु की प्रतीक्षा करो, सर्व निरंतर भगवान का चिंतन करते रहो, मृत्यु जब आएगा तो आप प्रमोटेड ऑटोमेटिकली। तो ये कैसे हो सकता है, ये चिंतन पूरी लाइफ टाइम कैसे हो सकता है, हम योगा करने तो नहीं जाएंगे। तो दो प्रकार की भक्ति है, विधि भक्ति, रागानुग भक्ति, इसका हमें पालन करना चाहिए। विधि भक्ति का अर्थ होता है श्रवणम कीर्तन नवदा भक्ति, सुबह 4:30 बजे उठना, मंगला आरती करना, 16 माला जप करना, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, ये सब विधि भक्ति में आता है। इसके अलावा भक्तों की संगति करना, ये सब आप जो सीखते हो ये सब वैधि भक्ति में होता है। इसका निरंतर पालन करने से आपका मन जो है वो सर्व नित्य सह नित्य लगा रहेगा। दैट इज बिग सक्सेस। यू नो अभी अभी रिसेंटली कौन मुझे बता रहा था, अभी मीटिंग के टाइम में किसी ने मुझे बताया, राधेश्याम प्रभु बता रहे थे मुझे, वो मुझे कह रहे थे कि जुड़ना एक बात होता है लेकिन जुड़ के आगे बढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जुड़ के चले जाने वाले लोग भी होते हैं, जो आता है फिर चला जाता है, फिर उससे अच्छा वो होता है जो आता है कुछ प्रगति करता है फिर खड़ा रह जाता है, वहीं का वहीं रह जाता है, आगे नहीं बढ़ सकता एक लेवल के बाद। और तीसरा वो एक तो था जो जुड़ता भी है, रहता भी है और बढ़ता भी है, तो हमें उस तरह से आगे बढ़ने के लिए निरंतर विधि भक्ति का और रागानुग भक्ति का पालन करना चाहिए। कृष्ण जो है वो हमेशा भक्त के हृदय में रहते हैं, एक क्षण के लिए भी भूल नहीं सकते, नॉट ए सिंगल मोमेंट। वो ब्राह्मण अपनी जीवा को पकड़ के टॉयलेट गया था तो गोपाल गुरु ने देखा, गोपाल ने उनको देखा, ये क्या है ऐसे, क्या मुँह ऐसे जीवा पकड़ के तुम शौच के लिए जा रहे हो। एक्चुअली वो दूर से दिख रहा था ऐसे, वो छुपा हुआ था पूरा, इतना केवल मुंह दिख रहा था उसका, वो ब्राह्मण का, और वो ऐसे जीवा पकड़ के खड़ा था। तो वो बच्चा था गोपाल उस समय, उसने देखा ये क्या कर रहा है, वो चैतन्य महाप्रभु का सब महिमा जानता था वो भक्त गोपाल। और जैसे वो वापस आया तो बोला ये क्या कर रहे थे तुम, ये जीवा को क्यों पकड़ के, बोले मैं निरंतर कृष्ण का नाम उच्चारण करता हूँ, लेकिन मैं टॉयलेट जा रहा था ऐसा अशुचि अपवित्र स्थान पर गया था, तो उस समय पर मैं भगवान का नाम कैसे उच्चारण करूँ, लेकिन मेरी जीवा जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो मैंने उसको पकड़ लिया ताकि वो भगवान का नाम उच्चारण ना करे। तो गोपाल ने उनको कहा गलत, बिल्कुल गलत। उन्होंने कहा कि अगर उसी समय जब आप शौच क्रिया कर रहे थे उसी समय अगर आपका शरीर त्याग हो गया तो क्या आप भगवान का नाम का उच्चारण किए बिना शरीर त्याग करोगे। तो भगवान के नाम के उच्चारण करने में शुचि अशुचि का कोई रुकावट नहीं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु जब ये नाम ये बात सुनी, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, उनसे उनका नाम बदल दिया, गोपाल गुरु कर दिया। क्यों गोपाल गुरु किया था, क्योंकि वो छोटी सी उम्र में गुरु की तरह शिक्षा दे रहे थे, इसलिए उनका नाम गोपाल गुरु कर दिया। दिस इज द प्रिंसिपल कि हमें किसी भी समय में बाथरूम में, बाहर, घर पे, मृत्यु समय में, हंसने में, रोने में, सब जगह भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए। अनन्य चेता सतत एवं हम समझ नहीं सकते। 15वां श्लोक रागानुग भक्ति स्पॉन्टेनियस भक्ति मानी जाती है। जब आप विधि भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं तो वो स्वाभाविक बन जाता है आपका, नेचर बन जाता है आपका भक्ति, तो सेकंड नेचर बोलते हैं ना उसको, दैट कृष्ण कॉन्शियसनेस बिकम योर सेकंड नेचर एंड देन इट बिकम्स योर रियल नेचर। सो दैट इज वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव। यशोदा माता वो सब राग भक्ति में, उनको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, वो 16 माला नहीं करेंगे तो आप ऐसा ही करें, आपने 16 माला नहीं किया, उनको यशोदा माता को नहीं कह सकते आप। ये सब जो लोग होते हैं वो उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आचरण को फॉलो करते हैं, जैसे प्रभुपाद भी फॉलो किया, उनको भगवान का विस्मरण नहीं होता है लेकिन उनको सब ये आचरण सिखाना पड़ता है, क्योंकि वो गुरु जो करेगा वो शिष्य करेगा, तो जब गुरु का आचरण देखेंगे तभी तो शिक्षा प्राप्त होगी ना।
अगर
भक्ति का कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भक्ति कामी क्या हो गया, कोई है क्या? ऐसे भक्ति कामी सिद्धि कामी सका के साथ मुक्ति कामी भक्ति कामी, जो भक्ति कामी है और मुक्ति कामी है सब आसान है। भक्ति का अर्थ होता है भोगवांछा और मुक्ति का अर्थ होता है मुक्ति, ये दोनों ही अशांत रहते, इनको शांति नहीं मिलती मन में। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, उनको कोई इच्छा नहीं, उनको एक ही इच्छा है कृष्ण का गुणगान करना चिंतन करना, इसलिए वो शांत अतएव शांत। आपके नेक्टर ऑफ ड्यूएशन में यही सारे विषयों की चर्चा होती है, रागानों का साधन भक्ति। तो एक वैधी भक्ति होती है, वैधी साधन भक्ति और रागानों का साधन भक्ति। साधन भक्ति जो होता है वो साधन का अर्थ ही होता है जिसका उपयोग करके आप कोई चीज को प्राप्त करो, और वो जो होता है वो रागात्मिका भक्ति होता है। रागात्मिका का होता है कि वो सिद्ध अवस्था में होती है, सो दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट एपिसोड इन डिटेल। और अभी 15-16 दोनों एक साथ पढ़ लो।
मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घेरे में है, दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता।
या तो यहाँ पर 15वें श्लोक में क्या कहा गया है कि मामुपेत्य श्लोक श्लोक क्लियर करता है कि दुखालय अशाश्वतम। अगर आप प्रयास करोगे यहाँ पर इस जगत में सुखी होने का तो संभव नहीं है, ये दुखालय है। तो आपको कोई बात नहीं, यू नो मैं जीऊंगा हमेशा, मृत्यु नहीं मिलेगा, भले दुख तो दुख, कभी सुख कभी दुख मैं सहन कर लूंगा, तो बोले वो भी नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि अशाश्वत है। तो दोनों जगह भटक गए, एक तो दुखालय है और अशाश्वत है। मामो पित्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वत नाप्नुवन्ति महात्मा, उसको फिर से ये जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता दुखालय अशाश्वत। तो सच डिवोटी वो राधर वो क्या करता है, उसका जन्म होने उस भगवान के धाम में भगवान की लीला में जन्म होता है। जैसे अगर आप इस समय भक्ति कर रहे हो, आप अच्छी भक्ति करते हो, गुरु महाराज का सेवा करते हो, प्रभुपाद का सेवा करते हो, और आप अच्छी भक्ति करते हो, तो आप अगर सिद्धि अवस्था तक पहुंच गए, आपको सक्सेसफुल माना गया, और आप का शरीर त्याग करने पर आपको प्रमोट किया जाना चाहिए भगवान के धाम में, तो आपको किसी लोक में भेजा जाता है भौतिक जगत में, जहाँ पर ये लीला प्रस्तुत हो रही है भगवान की। उस लीला में आपका एक डेमोन्स्ट्रेशन पीरियड होता है, उस लीला में आप रहो, आपका लाइफ यू नो पूरा एग्जीक्यूट भौतिक जगत में होगा, उसके बाद सक्सेस के बाद फिर आपको गोलोक वृंदावन में ट्रांसफर किया जाता है, नॉट डायरेक्टली, है ना। पहले आपको एक ऐसी जगह भेजा जाता है जहाँ लीला हो रही है, देन यू कैन गो बैक होम बैक टू कॉलेज।
चैतन्य महाप्रभु की लीला में कोई जाता?
हाँ हाँ जा सकते हैं ना, चैतन्य लीला में भी जा सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। चैतन्य महाप्रभु एक साल एक दिन में एक बार आते हैं, दिस इज नॉर्मल प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल को तोड़ना मरोड़ना ये भगवान का अपना, अभी वो क्या करते हैं हम कभी नहीं जानते, वी नेवर नो व्हाट ही डज। लेकिन ये जनरल सिद्धांत है कि आपको दूसरे लोक में जहाँ लीला हो रही है वसुदेव के रूप में आपको जन्म मिल सकता है, ऐसे कैसे जन्म मिलेगा जहाँ के आप दिस इज द डेस्टिनेशन ऑफ द डिवोटीज, भगवान के भक्त का ये परिणाम होता है, उनको इधर इस दुखालय में फिर से नहीं आना पड़ता जहाँ पर बार बार लोग आते रहते हैं दुखालय में। ये आपके लिए बनाए नहीं, आप क्यों इतना चिंता करते हो, ये भौतिक इधर आपके लिए नहीं बनाए, इसमें छोड़ो, इसमें आसक्ति मत रखो, ये आपके लिए नहीं बनाए, इट्स नॉट फॉर यू, आपके लिए भगवान का धाम बनाए। सुनने और सूर्य ने श्लोक में क्या कहा था, ब्रह्म भुवनालोका, वही श्लोक है ना, ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तन हो गया, ब्रह्मलोक से लेके अंतलोक में सब जगह पुनरावर्तन, कष्ट ही कष्ट सब जगह पुनरावर्तन, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, इतना नॉन स्टॉप चलता रहता है, 14 लोक उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह ये पुनरावर्तन चलता है, जन्म मृत्यु का पुनरावर्तन हो जाए। बट वन अटेन्स माय अबोर्ड, ये कुंती पुत्र अगर तुम मेरे धाम को आओगे तो ये नहीं होगा, स्पष्ट बताए, सो क्लियर डिमेंशन, मेरे धाम में आओगे तो जन्म मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि जन्म मृत्यु से पर है मेरा धाम, सो यू ट्राई टू कम टू दैट अबोर्ड ऑफ माइन विच इज नॉट वैकुंठ, कुंठ का चिंता नहीं है बिल्कुल, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है। ये केवल इसी जगत में इस तरह का कफिंग हो सकता है, आध्यात्मिक जगत में ये कफिंग कभी नहीं हो सकता। सो पहले तो यहाँ पर कोई सुख नहीं है, यहाँ पर केवल कष्ट ही कष्ट है, और वहां पर कोई कष्ट नहीं है भगवान के धाम में। यहाँ के लोग क्या करते हैं भौतिक जगत में, वी विल डू समथिंग, हम करेंगे कुछ, साइंटिस्ट लोग कहते हैं हम आपके लिए कुछ करेंगे, आप दुखी हो ना कोई बात नहीं, चंद्र पर बुकिंग करवा दो आपका, आप पेमेंट दे दो यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हम आपको चंद्र ले जाएंगे, वहां पर मृत्यु नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट है वो ऐसा दावा करते हैं, ऊपर कोई ऐसा दावा करते हैं कुछ साइंटिस्ट कि आप, हम लोग अभी प्रोसेस में है, लेबोरेटरी टेस्ट चल रही है, हमारे पास बहुत सारा होप है कि हम मृतक व्यक्ति को जीवित कर लेंगे, तो ये प्रोसेस में अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो आप अपना नाम लिखवा दीजिए और आपको पेमेंट देना होगा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कुछ 1,000-5,000-10,000 डॉलर होता होगा शायद, तो इतना आप पेमेंट दे दो, आपका नाम रजिस्टर करवा दो, जब आपका मृत्यु हो जाएगा तब आपके डेड बॉडी को आप हम ले जाएंगे और डेड बॉडी को लेके फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करके आपको जीवित कर देंगे। और आप मानोगे नहीं, अमेरिका की ये बात है, वहाँ पर लोग अपना नाम रजिस्टर भी करवाते हैं। तो प्रॉपर इसको कहते हैं पोस्ट डेटेड ब्लैंक चेक, प्रॉपर कॉल्स दिस इज पोस्ट डेटेड ब्लैंक चेक, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। प्रॉपर क्या साइंटिस्ट हमेशा पोस्ट डेटेड चेक ही दे दे रहे थे, बोले ये लोग पोस्ट डेटेड चेक, आगे ऐसा होगा, भविष्य में ऐसा होगा, भविष्य में, अब वर्तमान की बात करो ना, अभी क्या कर सकते हो, तो ना यू कैन नॉट डू देन स्टॉप, कीप क्वाइट, यू नो प्रॉपर सेज वेरी क्लियरली। सो हमें इस आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकर्षित होना चाहिए, और जिस तरह से मन निरंतर कृष्ण में रहेगा तो आप चाहे किसी भी जगह पर हो, प्रभुपाद का एग्जांपल दिया कि माय रेसिडेंस इज इन वृंदावन, माय रेसिडेंस इज एट वृंदावन, ये बात कर रहे थे न्यूयॉर्क में 1966 में, दिस इज द प्लेस ऑफ कृष्ण वेयर कृष्ण एडवांटेड हिमसेल्फ, ये कृष्ण लीला जहाँ हुई थी वो स्थान। सो नाउ आई एम इन अमेरिका, in your country, but that does not mean that I am out of Vrindavan. इसका अर्थ ये नहीं होता कि मैं वृंदावन से बाहर हूँ, हालांकि मैं न्यूयॉर्क में हूँ, इसका अर्थ नहीं कि मैं बाहर हूँ. बिकॉज इफ आई थिंक ऑफ कृष्ण ऑलवेज इट इज एज गुड एज स्टेइंग इन वृंदावन. मैं निरंतर कृष्ण का चिंतन करता हूँ तो मैं वृंदावन में ही रहता हूँ. इवन दो आई एम इन न्यूयॉर्क इन दिस अपार्टमेंट बट माई कॉन्शियसनेस इज देयर इन वृंदावन. कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स यू ऑलरेडी लिव विद कृष्ण इन हिज स्पिरिचुअल प्लैनेट. You simply have to wait to give up your body. Yeah. You are already there. आप यहाँ पर कोई कई भक्त होते हैं जिनको भगवान के धाम के प्रति प्रेम होता है. मैं वृंदावन मेरा एक घर मेरा एक घर. पर मैं हमेशा उन भक्तों को कहता हूँ कि घर घर की क्या कर रहे हो, वृंदावन में घर लेना है, मायापुर में घर. Why you are thinking so much on that? धाम में रहने का अर्थ होता है कॉन्शियसनेस होना है. टू इम्प्रूव द कॉन्शियसनेस थिंक ऑफ कृष्ण, थिंक ऑफ वृंदावन. Think of Mayapur, then always you are in Mayapur. Always you are in Vrindavan. You no need to physically go there and stay. No. That doesn't minimize the value of staying in Dham. If Dham mein jaane ka iska ninda nahi hai. Lekin Prince Siddhant kya hai? Siddhant hai ki hame apni chetna ko Bhagwan ke Dham mein rakhne chahiye. Bhagwan ke chanon mein. Then you are in Dham. Sometimes you are better than who are staying in Dham. Dham में रहने वालों से आप शायद कई बार ज़्यादा अच्छा धाम का वास करते हो, धाम में रहे बिना. So that you should try to think of. So next last part बचा है इस chapter का, वो हम next sitting में पूरा करेंगे और नौवां अध्याय शुरू करेंगे. और practically we have only 3 weeks left. तो उसमें 3 सीटिंग में हम 9 अध्याय को 9वां अध्याय भी पूरा करेंगे. सो वी स्टॉप हियर. आई एम सॉरी एक्सटेंडेड 5 मिनट्स मोर. आज हमने कोई एक्सरसाइज नहीं किया, हम ग्रुप डिस्कशन करने वाले थे बट 16 श्लोक टुक 2 आवर्स 16 श्लोक. सो वी स्टॉप हियर. संडे को